मैं ठीक हूँ बड़ी माँ, आप परेशान मत होइए। अब तो दर्द भी आराम है, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। और अगर मुझे लगा कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए तो मैं चली जाऊंगी, आप चिंता मत करिए। आरवी ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, पर ये इतना भी आसान नहीं था। उन्होंने एक बार फिर चिंता भरी निगाहों से उसे देखते हुए पूछा, बेटा आपको ये चोट लगी कैसे? क्या फिर से शान ने कुछ किया है? ठीक इसी वक्त शान बालकनी से रूम में आया, जिससे दोनों का ध्यान उसकी तरफ चला गया। शान ने उन पर ध्यान नहीं दिया और बेड की तरफ कदम बढ़ा दिए। आरवी उसे ही देख रही थी तो अर्पिता जी ने उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए सख्त लहजे में कहा, आपको उनसे डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमें सच सच बताइए, क्या शान ने आपको तकलीफ पहुंचाई है? क्या उनकी वजह से आपका पैर मुड़ा है? शान दोनों को नजरअंदाज करते हुए बेड की दूसरी तरफ बैठी अंशु के पास आ गया और उसे अपनी बाहों में उठाए वहां से जाने लगा। अर्पिता जी जवाब के इंतजार में आरवी को देख रही थीं। आरवी कुछ पल खामोशी से उन्हें देखती रही, फिर उसने निगाहें घुमाकर जाते हुए शान को देखते हुए गंभीरता से कहा, नहीं बड़ी माँ, उन्होंने कुछ नहीं किया। जल्दबाजी में रूम में आते हुए मेरा पैर स्लिप हो गया, जिससे मैं गिर गई थी और तभी मेरा पैर मुड़ गया। आरवी के शब्द जब शान के कानों में पड़े, उसके आगे बढ़ते कदम रुक गए, फिर वो तेज कदमों में रूम से बाहर निकल गया। आरवी ने अब निगाहें अर्पिता जी की तरफ घुमाते हुए हल्की मुस्कान लबों पर सजाते हुए कहा, सच्ची बड़ी माँ, उन्होंने कुछ नहीं किया है। मेरी गलती की वजह से मुझे चोट लगी, आप बेवजह उन पर शक कर रही हैं। उन्होंने मुझे दर्द नहीं दिया, उल्टा उन्होंने तो अपने गुस्से और नफरत को किनारे रखकर मेरा इतना ध्यान रखा। उनकी वजह से ही अब मुझे दर्द से आराम मिला है। वो इतने भी बुरे नहीं हैं बड़ी माँ, वो जानबूझकर सबकी नज़रों में बुरा बन रहे हैं। वो आज भी मेरी परवाह करते हैं, बस अब उसे अपने गुस्से के पीछे छुपाने की कोशिश करते रहते हैं। और उनका गुस्सा और नफरत अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मेरी वजह से आप सब उनसे नाराज मत होइए। हमारे बीच जो भी प्रॉब्लम है हम उसे सॉल्व कर लेंगे। जो भी गलत उन्होंने मेरे साथ किया है उसकी सज़ा मैं उन्हें खुद देना चाहती हूँ। प्लीज़ आप सब मेरी वजह से उनसे अपने रिश्ते खराब मत कीजिए। वो मुझसे वैसे ही नाराज़ हैं, ऐसे में अगर आप सब उनके साथ ऐसे व्यवहार करेंगे तो वो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनसे उनका परिवार और उनका साथ छीने। फिर अब तो वो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करते, तो रहने दीजिए ना अपनी नाराज़गी। आरवी की बातों को खामोशी से सुनने के बाद अर्पिता जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हम आपका खाना यहीं भिजवा देते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा और अगर ज़रूरत पड़े तो हमें फ़ोन करके बुला लीजिएगा। उन्होंने प्यार से उसके सर को सहलाया और वहां से चली गईं। उन्होंने आरवी की बातों को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। ये देखकर आरवी की आंखों में नमी तैर गई। उसने नम आंखों से जाती हुई अर्पिता जी को देखते हुए मन ही मन कहा, मैं क्या करूं कि सब ठीक हो जाए? यहां सब मेरे वजह से आपसे नाराज हैं, अपने ही घर में आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं। मैं नहीं बनना चाहती अपने पिता के जैसे। मुझे नहीं पता कि क्या सच है और क्या झूठ, पर आपको और बाकी सबको तो यही लगता है कि उन्होंने आपसे आपकी माँ को छीन लिया, आपके पिता और आपको मारने की कोशिश की, और अब मैं ना चाहते हुए भी आपके परिवार के आपसे दूर होने की वजह बन गई हूँ। मैं सब ठीक करना चाहती हूँ, पर समझ नहीं आ रहा कि कैसे ठीक होगा सब। जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी आपकी नफरत भी खत्म नहीं होगी, और सच्चाई को सामने लाने का कोई तरीका ही नहीं नजर आ रहा मुझे। आरवी मायूस सी बैठ गई, फिर उसने अपने आंसू पोंछते हुए खत से ही कहा, कोई बात नहीं, चाहे ये कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, पर मैं हार नहीं मानूंगी। अभी भले मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, पर मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी। मुझे नहीं पता कि मैं कभी सच सामने ला भी पाऊंगी या नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर सच्चाई है क्या, और जब वो सामने आएगा तो अपने साथ कौन सा नया तूफान लेकर आएगा। चाहे सच्चाई कुछ भी क्यों ना हो, पर मैं उसका सामना करूंगी। अगर मैं सच सामने लाने में फेल हो गई तब भी मैं हार नहीं मानूंगी, और अब से मेरी पहली कोशिश आपके मन से नफरत को खत्म करना होगा। अगर मेरे प्यार में ताकत होगी तो वो आपकी नफरत को जरूर हराएगा। उसके बाद हकीकत कुछ भी क्यों ना हो, पर उसका हमारे रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब से मेरी जिंदगी का पहला मकसद है अपने प्यार की बारिश से आपके मन में सालों से धधकती नफरत की आग को बुझाना। चाहे ये कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, पर मैं अपने प्यार को हासिल करके ही रहूंगी। आरवी ने मन ही मन निश्चय किया और सुभाष जी की बताई बातों के बारे में सोचने लगी। कुछ देर बाद शान अंशु के साथ वापस आया और उसके साथ ही छाया भी आई, जिसके हाथ में खाने की ट्रे थी। वो उनका डिनर रखकर चली गई। आरवी और शान तो खामोशी से खाना खाने लगे और साथ ही अंशु को भी खिला रहे थे, पर अंशु की बकबक जारी थी, जिसकी वजह से दोनों के लबों पर मुस्कान बराबर बनी हुई थी। यही तो कड़ी थी उनके रिश्ते की। खैर, डिनर खत्म हुआ, अंशु सारा दिन की थकी हुई थी तो आरवी की गोद में लेटकर जल्दी ही नींद की आगोश में चली गई। शान अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था, पर ध्यान बराबर उन दोनों पर बना हुआ था। जब उसने देखा कि आरवी कुछ परेशान सी लग रही है और अपने पैर को हिलाने की कोशिश कर रही है, तो उसकी भौहें आपस में जुड़ गईं। उसने तुरंत ही लैपटॉप बंद किया और उठकर आरवी के पास चला आया।
आरवी परेशान सी अंशु को अपनी गोद में ठीक से लिटा रही थी, तभी उसके कानों में शान की सख्त आवाज पड़ी। क्या प्रॉब्लम है? आवाज सुनकर आरवी ने चौंकते हुए निगाहें घुमाई तो शान उसके पास ही खड़ा था और चेहरे पर गंभीर भाव लिए उसे देख रहा था। आरवी के हैरानी भरे एक्सप्रेशन को देखते हुए शान ने दोबारा कहा, मुझे घूरना बंद करो और बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है। आरवी ने तुरंत ही खुद को संभालते हुए कहा, वो पैर में दर्द हो रहा है, अंशु को बेड पर सुलाना था पर हो नहीं पा रहा। शान ने बस सर हिला दिया और झुकते हुए अंशु को अपनी बाहों में उठा लिया। फिर वो जैसे ही पीछे हटकर गेट की तरफ जाने लगा, आरवी ने घबराकर एकदम से कहा, मैंने बेड पर सुलाने को कहा है, दूसरे रूम में लेकर जाने को नहीं कहा था। मतलब आज अंशु को यहीं सोने दीजिए, सुबह उठेगी तो मुझे ढूंढेगी और ऐसी हालत में मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगी उनके पास। आरवी ने अपनी परेशानी बताई और उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगी, पर शान ने उसको पलट कर देखा तक नहीं और आगे बढ़ गया। आरवी एकदम से उदास हो गई और मुंह लटकाकर बैठ गई। कुछ देर बाद उसके कानों में एक बार फिर शान की आवाज पड़ी, मैं अंशु को उसके रूम में लेकर भी नहीं जाने वाला था। आरवी ने एक बार फिर चौंकते हुए निगाहें आवाज की दिशा में घुमाई। शान बेड के दूसरे साइड खड़ा था और अंशु बेड पर उसके पास सो रही थी। आरवी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने पहले अपने बगल में सो रही अंशु को देखा, फिर हैरानी और उलझन भरी निगाहों से शान को देखने लगी, तो उसने अपनी बात आगे कहना शुरू किया। उस तरफ तुम बैठी थी तो तुम्हें प्रॉब्लम ना हो इसलिए इस तरफ आ रहा था, पर तुमने गलत समझ लिया। खैर जाने दो, अब तुम आराम से सो जाओ, जब तक तुम्हारा पैर ठीक नहीं हो जाता अंशु यहीं सोएगी तुम्हारे पास। शान ने अपना फैसला सुनाया और उसको सोने का बोलकर वापस जाकर सोफे पर बैठ गया। आरवी कुछ देर तक यूं ही बैठे बैठे उसको देखती रही। जब से उसके पैर में लगी थी, शान का व्यवहार उसके प्रति बदल सा गया था, बहुत सॉफ्ट हो गया था वो उसके लिए।
कुछ पल उसको देखते रहने के बाद आरवी बिस्तर पर लेट गई और जल्दी ही उसको नींद भी आ गई। शान को शायद इसी पल का इंतजार था। टू बी कंटिन्यूड।